वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
दोस्तों, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं मरियम मेहरदादी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। आइए पहले सूरह साफात की आयत नंबर 31, 32 और 33 की तिलावत सुने।
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون।
आखिरकार हम अपने पालनहार के इस आदेश के पात्र बन गए कि निश्चय ही हम दंड का मजा चखने वाले हैं। तो हाँ, हमने तुम्हें बहकाया कि निश्चय ही हम खुद भी बहके हुए थे। इस तरह वे सब उस दिन ईश्वरीय दंड में एक दूसरे के सहभागी होंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया कि गुमराह होने वाले लोग प्रलय के दिन अपने पापों को, कुफ्र का प्रचार करने वालों और समाज के गुमराह नेताओं पर डालने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि उन्होंने हमें गुमराह किया है। लेकिन वे जवाब में कहेंगे कि तुम लोग खुद ही गुमराही के चक्कर में थे और अपनी उद्दंडता और सत्य के विरोध के कारण हमारे पीछे चल पड़े। हमने तुम्हें ज़बरदस्ती और शक्ति के बल पर गुमराह नहीं किया था। हम तो खुद गुमराह थे ही, और हमने तुम्हें भी जो हमारे पीछे पीछे चल पड़े थे गुमराह कर दिया।
ये आयतें कहती हैं कि गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस प्रकार के विवाद और बातचीत का प्रलय में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके दंड के बारे में ईश्वरीय आदेश आ चुका है और जल्द ही वे दंड का स्वाद चखेंगे। इस ईश्वरीय दंड में वे सभी सहभागी हैं और उनका ठिकाना नरक है। अलबत्ता स्वाभाविक है कि नरक में वे अलग अलग स्थान पर रहेंगे। हर किसी को उसके पाप और दूसरों की गुमराही में उस पाप के प्रभाव के अनुसार दंड मिलेगा, और सभी पापों का दंड एक समान नहीं होगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि प्रलय में पापी दंड के उस वादे को मान लेंगे जिसकी घोषणा पैगंबर दुनिया में करते थे, लेकिन उनके इस मानने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा।
गुमराह लोगों के साथ रहने से इंसान की गुमराही का रास्ता समतल होता है, और उनका साथ देने के कारण इंसान नरक में पहुंच जाता है।
बुरे लोगों को समाज के नेताओं के रूप में स्वीकार करना और उनका अनुसरण करना अत्याचारियों व गुमराहों की मजबूती का कारण बनता है, और उसके परिणाम में लोग उनके दंड में भागीदार बन जाते हैं।
आइए अब सूरह साफ़ात की आयत नंबर 34 और 35 की तिलावत सुने।
इन्ना कذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون।
हाँ, हम अपराधियों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। ये वे लोग थे कि जब इनसे कहा जाता था कि ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे।
ये आयतें पापियों व अपराधियों के संबंध में ईश्वर के व्यवहार की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि जब ईश्वर के पैगंबर लोगों को एकेश्वरवाद और अनन्य ईश्वर की उपासना का निमंत्रण देते थे, तो उनमें से कुछ घमंड दिखाते थे और उनकी बातें सुनने या उनके बारे में विचार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस तरह के लोग द्वेष व हठ धर्म के कारण कुफ्र व अनेकेश्वरवाद का रास्ता अपनाते हैं और प्रलय में उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा।
सत्य के मुकाबले में ये घमंड और हठ धर्म कभी कभी अपने आप को श्रेष्ठ समझने और धन पद ख्याति व स्थान की वजह से होता है और कभी कभी अपने पूर्वजों या समाज के नेताओं के अंधे अनुसरण और उनके विचारों व आस्थाओं पर आंख बंद करके विश्वास करने की वजह से भी होता है। दोनों स्थितियों में ये सत्य को सुनने और उसे मानने की राह में एक बड़ी रुकावट है।
सत्य के मुकाबले में घमंड इंसान को उस जगह तक पहुंचा देता है कि घमंडी व्यक्ति न केवल सत्य का इनकार करता है बल्कि सत्य कहने वाले को हीन समझकर उसका मजाक भी उड़ाता है और उस पर गलत आरोप भी लगाता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर के वादे लोक परलोक में जरूर पूरे होंगे और उनकी कभी भी वादा खिलाफी नहीं होगी।
पाप अपराध और गुमराही की जड़ एकेश्वरवाद और सत्य के मुकाबले में घमंड है।
पैगंबर लोगों को अपनी तरफ नहीं बल्कि अनन्य ईश्वर की ओर बुलाते थे। वे इस निमंत्रण में अपने लिए कोई हित या फायदा दृष्टिगत नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद हमेशा लोग उन पर आरोप लगाते थे और उन्हें यातनाएं देते थे।
आइए सूरह साफात की आयत नंबर 36, 37 और 38 की तिलावत सुने।
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ।
और अनेकेश्वरवादी कहते थे कि क्या हम एक पागल शायर के लिए अपने खुदाओं को छोड़ दें? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो सत्य लेकर आया है और उसने पिछले पैगंबरों की पुष्टि की है। निश्चय ही तुम अत्यंत पीड़ादायक दंड का मजा चखने वाले हो।
ये आयतें पैगंबरों के निमंत्रणों को ठुकराने के संबंध में अनेकेश्वरवादियों के तर्क का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि वे पैगंबरों पर आरोप लगाते थे कि उनकी बातें शायरों की तरह ठोस सोच तर्क पर नहीं बल्कि विचारों व कल्पनाओं पर आधारित हैं। इसके अलावा वे कहते थे कि पैगंबर ने जिन्नों के प्रभाव में शेर शायरी सीखी है और उनका अपना कोई विचार नहीं है। इतिहास में आया है कि अरब के लोगों का मानना था कि शायर जिन्नों से संपर्क के माध्यम से शेर की कला सीखते हैं और इसीलिए वे इतने सुंदर शेर कह सकते हैं।
इन आयतों से हमने सीखा कि गलत व अंधविश्वासी विचारों व आस्थाओं पर हठ धर्म सत्य को स्वीकार करने की राह में रुकावट है।
आरोप व अनादर पैगंबरों के निमंत्रण को फैलने से रोकने के लिए इनकार करने वालों के हथकंडों में शामिल है।
सभी पैगंबरों की शिक्षाओं की दिशा एक ही है। उन सभी ने लोगों को एकेश्वरवाद और अनन्य ईश्वर की उपासना का निमंत्रण दिया है।
दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।